محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الغرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم. اما
کسی طالب علم کو داخلہ دیں کسی کلاس میں تو سال کی ابتدا سے ہی ایک اچھے اور سمجھدار طالب علم کو فکر پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے کامیاب ہوں، پاس ہو جاؤں، ناکام نہ ہوں، فیل نہ ہوں. حالانکہ پورا سال پڑھا ہوتا ہے بھی، لیکن ابتدا سے اس کو فکر ہے اس چیز کی کہ بھائی میں ناکام نہ ہو جاؤں. بعض ایسے ہوتے ہیں طالب علموں کے آخری سال تک ان کو فکر نہیں ہوتی، جب رزلٹ نکلتا ہے تو دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک کوئی شخص جس کو فکر رہا ابتدا سے، الحمدللہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. اور ایک شخص جس نے فکر ہی نہیں کیا، بس سوچا بھی نہیں کامیابی ناکامی کو، تو ناکام ہو جاتا ہے. یہی ہماری زندگی ہے کہ ابتدا سے جو فکر ہے ہماری، اس دنیا میں آتے ہی پیدائش کے ساتھ ہی فکر یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو کامیابی کی حالت میں جائیں. اور جن کو یہ فکر نہیں ہوتی تو ظاہر ہے پھر وہ کامیاب کیسے جائیں گے. فکر والا جو ہے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کامیابی حاصل کرنے کی، ذرائع استعمال کرتا ہے، سباب استعمال کرتا ہے. لیکن جس کو فکر ہی نہ ہو تو وہ کچھ نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا فیکٹ ہے کہ اس کے رزلٹ تو پھر صاف ظاہر ہوں گے انسان کے ساتھ. اور جب یہ فکر انسان میں کم ہونا شروع ہو جائے بتا دیج، تو یہ بہت خطرناک دور بن جاتا ہے، بہت خطرناک زمانہ بن جاتا ہے. اس دور کے اندر بہت خطرناک انسان بن جاتا ہے، بلکہ انسان کا نام ہوتا ہے لیکن جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے وہ شخص. اس کی فکر جو ختم ہو گئی، پتہ نہیں چلا اس کو میں نے کرنا کیا ہے. یہی ہے دنیا ہمارے ساتھ، معاملہ ایسے ہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ مسعودی رحمۃ اللہ نے حوالہ دیا ہے اس واقعے اپنی کتاب میں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تو آپ ہم سب جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا مقام تھا اور کتنے بلند انسان تھے صحابہ میں، اور مقام آپ ساری دنیا دیکھی کہاں پر آرام فرما رہے ہیں، کس کے ساتھ ہیں. تو اس ان کے حال دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے مر جاؤں میں تو तुम भी कफन की फिक्र ना करना कि अच्छा कफन हो या आला दर्जे का कफन हो, मामूली दर्जे का भी मौतदल किस्म का भी कफन मिल जाए तो मुझे लपेट देना उसमें और मुझे दफना देना। अगर अल्लाह ने खैर फरमाई, खैर कर दी, फिर तो उम्र की कब्र जो होगी वो कुशादा हो जाएगी, इतनी कुशादा होगी कि जहां तक मेरी निगाह जाएगी वहां तक मेरी कब्र भर जाएगी। और अल्लाह ने खैर ना फरमाई तो ये कब्र जो है मुझे इस कदर भींचेगी कि मेरी पसलियां और मेरी हड्डियां जो है चूरा चूरा हो जाएंगी। ये हस्त मकर दिल अंदाज था सोचने का, जो कि हर मुसलमान को ही सोचना चाहिए। कामयाबी आएगी, यहां की कामयाबी तो है ही दोस्तों, असल चीज तो जो है वो आखिरत है। हम अगर अपने गिरेबान में डालेंगे देखेंगे कितनी इस पर फिक्र हमारी कितनी है, और फिक्र हो तो इस पर काम कितना बड़ा है। कर भी रहे होंगे तो देखें वो जो अल्लाह ताला ने जो अंदाज बताया है इस फिक्र पे कामयाबी को हासिल करने का, वो आजकल तो बहुत कम नजर आते हैं। असल चीज जिससे इंसान की कामयाबी होगी जो अमल है वो अमल बहुत कम हो गया, बहुत कम है। जब वो अमल कम है तो ये मामला बड़ा खराब है फिर तो इंसान का। ये देख लें हम आलमी हों इंसान के, लेकिन वो अमाल भी बेकार हो जाते हैं फिर अगर उस अमल को ना साथ रखा जाए। और जो वो है बात असल में दुश्मन के साथ मुकाबला है हमारा, अदब मुबीन जो है हमारा दुश्मन कौन है, शैतान। अल्लाह ने उसको ताकत भी दी है और बहुत अल्लाह ताला से इजाजत भी लेकर आया हुआ है कि जी मैं इनको छोड़ूंगा, इंसान को नहीं छोड़ूंगा। तो हकीकत यह है कि जो आखिरत में कामयाबी चाहता है तो उसको अपने दुश्मन से बड़ा होशियार होना चाहिए। जो दुश्मन से होशियार होगा समझोगे भाई वो वाकई मामला सही कर रहा है, क्योंकि उसके पास तो बड़े बड़े हथियार हैं, बड़े बड़े आबिद जाहिद, बड़े बड़े ऊंचे इंसानों को एकदम पैदल कर देता है सेकंड के अंदर, सेकंड में तबाह कर देता है, सब इबादत खत्म हो जाती है उसकी इंसान की। बहुत से वक्त आप हमारे सामने वो ऐसा शैतान जो है उसका ताल्लुक हमारे साथ इतना स्ट्रांग है, इतना बड़ा दुश्मन है, अल्लाह ने उसको दी है पूरी छूट कि जिसता चाहे तुमको वर्गला और ले जाओ अपने साथ। तो उसके लिए तो बड़ा अच्छा काम तो इंसान के अंदर दौड़ता है, दिल में बैठ जाता है, अंदर आ जाता है, बस उसे पैदा करता है, कंट्रोल कर लेता है। वम्मा यंजन्नकुम मिन शैतान, कुरान ने कहा अल्लाह ताला ने। ये शैतान जो है इंसान के अंदर वसवसे पैदा करता है, यंजन्नकुम ये वसवसे पैदा करता है और ख्यालात ऐसे पैदा करता है, गुनाहों की रखबत देता है, गुनाहों को लुत्फ पैदा करता है। किसी भी इंसान इबादत में खड़ा हो तब भी वो वहां ले आता है ख्यालात को, और फिर वो ख्यालात इंसान के अंदर स्टिमुलेट होते हैं, जमा होते 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 वो शक्ल अख्तियार करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर जाता है, उस पर वो काम कर जाता है आदमी। पहले वो उसके इतने ख्याल पैदा करेगा, जना की तरफ ख्याल डालेगा, तस्वीर पैदा करेगा, फिर वो उसको इतना करता रहेगा क्योंकि उसको ठुल है, मुझे नमाज पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, बहुत सख्त परेशान है कि तबीयत फिर मेरी ये काम करने को करती है, तबीयत फिर मेरी ये काम करने को करती है, तबीयत फिर मेरी ये काम करने को करती है, क्या करें, परेशान करते 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 उस मुकाम तक उसको ले जाता है, पहुंचा देता है। जगन नकून शैतान, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब ये हालात तुम्हारे साथ पेश आए तो इलाज बताते हैं कुरान। अब ये आम हालात है हमारे साथ, इस तरह ये गुनाह के कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने बताया कि इंसान गुनाह करता क्यों है, और ऐसे ऐसे गुनाह इंसान से होते हैं कि अगर वो गुनाह इंसान खुद भी सोच के मैंने किस तरह कर दिया इतना बड़ा गुनाह, मैं जानवर कैसे बन गया था, या मैं किस तरह हो गया मुसीबत, ये मैंने कैसी की है, उस गुनाह के बाद को खुद ही समझ नहीं आता, मैंने इसको कत्ल कैसे कर दिया, मैंने ये गलत काम कैसे किया, इतना बड़ा गलत काम मैंने कैसे कर लिया, क्योंकि वो इंसान कैप्चर हो जाता है दिमाग पर, शैतान उसको जीते जगन ने कौन शायद बताता ना कि ये जो पोजीशन हो इंसान की, अब दो किस्म के लोग हो जाते हैं, अगर जो इस पर चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, वो बच नहीं सकते, हर काम कर सकते हैं, हर काम हो सकता है उससे, तो अल्लाह ताला उसका फिर इसी आयत के आखिर में इलाज बताते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत कम लोग हैं जो आज वो अमल कर रहे हैं कि जिससे हम कामयाब होंगे। नौजुन फस्तअज़बिल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह समीउ अलीम, कि ऐसे हालात में जब इंसान के वसवसे भर रहे हों, गुनाहों की तरफ रग़बतें जारी हों, गुनाह की तरफ रग़बत कर रहा हो, गुनाह कराने करा रहा हो, इंसान कर रहा हो, घबराया हो, क्या किया जाए, बिल्कुल उसकी हालत जो है वो बहुत बदतर हो चुकी हो, तो अल्लाह ताला ने किया इसके लिए सबसे पहला काम क्या है, नज़ुन फस्तअज़बिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला से पनाह मांगे आदमी, बात समझ आ गई, क्या करे, पनाह मांगे, बेस्ट इलाज को हम बता रहे हैं, और किस कॉन्फिडेंस पर ना जो आयत बात कही है, इन्नहु समीउल अलीम, याद रखना जिससे तुम पनाह मांग रहे हो कोई छोटी चीज नहीं है, वो समी भी है और अलीम भी है, सुभान अल्लाह। जब तू पनाह मांगेगा तो देख तेरा अल्लाह सुन रहा होगा तेरी बात को, किस किस पोजीशन में तू बचना तो भान मांग रहा है कि अल्लाह ताला मुझे बचाए इस चीज से, मैं गया अल्लाह ताला मैं तो गया, मुझसे होने वाला ये काम, बिल्कुल ना धोखे में आना शैतान के, अल्लाह ताला के तो काबू है मेरे, तू कर ना ऐसी ऐसी तेरी कहते, बस तुम्हें काम फौरन पनाह मांग रहे अल्लाह ताला से, उस पोजिशन में तुम हो गए कि तुम बिल्कुल जना के चक्कर में, बिल्कुल कई मिसालें ऐसी हैं, बिल्कुल पोजिशन में हो तुम, जना के अंदर हो, तुम दाखिल हो चुके हो और काम शुरू होने वाला है, और किसी ने अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया इस वक्त भी, अल्लाह सुब्हान तआला उसको बचा लेता है, समीउल अलीम अल्लाह ने कहा है। तो ये जो है हम हाथ पे हाथ करके बैठ रहे हैं, हम तो बुरे काम हो जाते हैं, हमसे क्या करेंगे, फला हो गया, इसलिए कि हम वो बात ही नहीं करें जो अल्लाह ताला हमें कहा है। बिल्कुल सही है कि शैतान हमें धकेलता है गुनाहों की तरफ, हम करते हैं बड़े बड़े गुनाह से होते हैं, होने नहीं चाहिए, उस वक्त जब गुनाह की तरफ ख्यालात जा रहे हैं, रगबत आ रही है, घूम रहे इंसान, अब पहुंचने वाला है, तो बस एक काम उसने करना है, क्या, अल्लाह ताला मुझे बचा, फस्तअज़बिल्लाह, उसका यकीन अल्लाह दिला रहा है कि समीन भी है और अलीम भी है, वो जानता है सब कुछ कि कैसे तुझे निकालना है, कैसे बचाना है, क्योंकि शैतान को तो मैंने दी है ना चांस, देख उसको कैसे निकाल के तुझे साफ कर दो, तो बस समझ आ गया नहीं तो। लेकिन इंसान इतना ढीला पड़ जाता है उस गुनाह को कि वो अल्लाह को भूल जाता है, जीत शैतान की कामयाबी होती है, उस वक्त भी इंसान अगर अल्लाह को याद कर ले इतनी बुरी हालत के अंदर भी, तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुझे बचा लूंगा। अब सवाल है इसी आयत के अंदर, ये मुफस्सिरीन लिखा है جو باتیں میں آپ کے سامنے میں نہیں تجربہ کر رہا, یہ تو مفسرین کی باتیں کر رہا ہوں, مزرگان دین نے لکھا ہے. اب جس استزازے کی یہ بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ مجھ سے پناہ مانگو, وہ پناہ کیا ہے, کس طرح مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے, وہ بتا دے اللہ پاک آگے بھی اسی آیت میں آگے کہ پناہ بھی مانگو گے کیسے مجھ سے, کیا چیز ہے جس طرح سے تم مجھ سے پناہ مانگو گے تو میں تم بچاؤں گا گناہ سے. اس کے لیے تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں, جو میری بات سمجھ جاتے ہیں, انہیں ہو رہا ہوتا ہے ان سے لیکن بات میری سمجھ گئے ہیں کہ اللہ نے اس کا نسخہ بتایا ہے قرآن کے اندر. شیطان نے تو مجھ پہ وار کر دیا, میں تو کر رہا ہوں, میں تو جانے والوں بس گیا. میں تو بڑے بڑے عابد زاہد, یہ کوئی نہیں کہ بھائی گناہ کوئی نیک آدمی اور ہیں, یہ ایسی کا چکر ہی نہیں شیطان کے نزدیک کون نیک بات. اس نے تو کام کرنا ہی اپنا, وہ تو قبر سے تھوڑی دیر پہلے بھی ہمیں اللہ معاف کرے ایمان سے خارج کر سکتا ہے, اس کی تو بہت چکر بات ہے. لیکن اگر اللہ کی بتائی ہوئی جو استزازہ ہے, استزازہ جو اس کو ہم استعمال کریں, پھر شیطان کچھ بھی نہیں, اللہ کے فضل سے طاقت نہیں شیطان کی بنتی کچھ بھی, بالکل صحیح ہے. تو وہ کیا چیز ہے, یہ اب سننے والی بات ہے. یہ قرآن ہے, تذکرو, کہ وہ پھر سمجھدار لوگ جو سمجھ گئے میری بات کو کیا کرتے ہیں, تذکرو, اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. اللہ فزاہم مبصرون, قرآن کہتا ہے کہ جیسے جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. فزاہم مبصرون, سبحان اللہ, وہی گناہ جس میں لذت آ رہی ہوتی ہے, اس کو لطف آ رہا ہوتا ہے, جس کو ڈوبا ہوتا ہے گناہ کے اندر. لیکن جب وہ استغاظ, کیسا ہے استغاظ, کیا ہے پناہ, کون سی ہے, یہ نہیں کہ پناہ مانگ رہے, نہیں, پناہ کا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا ذکر اس نے شروع کر دیا, اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا. اللہ کہتا ہے فضا میں اس کی آنکھوں کو کھول دوں گا, وہ یہ کیا کر لیا, میں کیا کروں, بھاگ گئے وہاں سے, چھوڑ دیا. فضا پتہ یہ چلا کہ آج جو گناہوں میں ملوث ہیں ہمارے جوان لوگ, بڑے لوگ, چھوٹے لوگ, بچیاں, بچے, سب ماں باپ جتنے بھی ہیں, معاشرہ بگڑ چکے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا بتایا علاج چھوڑا ہوا ہے. ورنہ شیطان کی کیا مجال, شیطان تو ہے ہی کچھ, وہ تو بالکل ختم. آخر اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے آگے کہ جو یہ بات میری نہیں مانتے, جو آج کل ہم نہیں مان رہے, یمدون ہوں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یمدون ہوں فی بقی, سبحان اللہ, کہ جو ہی میری باتوں کو نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میں بتا رہا ہوں قرآن, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یمدون ہوں فی بقی, پھر کیا ہے, شیطان ان کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف, بالکل بےکار ہوتے ہیں, تو یمدون ہوں فی بقی کھینچ لیتے ہیں, سما نہ یک سرون, بس پھر اس کے بعد وہ باز نہیں آ سکتے گناہوں سے, ان کو کوئی بچا نہیں سکتا گناہوں سے. نصیحت کریں جی, یہ کریں جی, ان کو فلاں کریں جی, اس میں بھیج دیں, اس میں کر دیں, فلاں کر دیں, کوئی بار نہیں چلتا میرے دوستوں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ان کے سروں پہ قرآن بھی رکھ دیں گے نا, آپ کھانا کھانا چکر بھی کرائیں گے نا, ان کو جتنی عمر بھی کرائیں گے نا, آج بھی کرائیں گے, آ کے انہیں پھر وہی کام کرنا ہے. دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے علاج کریں, ٹھیک ہے یہ بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا, پھر انہوں نے آگے وہی کام کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں علاج بتایا ہے کہ شیطان کو قابو کرو, شیطان کو قابو کرو, یہ مت دون, وہ اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر گئی, وہ تو تمہیں پھر کھینچ لے گا, کھینچتا ہوا لے جاتا ہے تمہیں گناہوں کی طرف. اللہ کو سم اللہ یک سرون, پھر تم پاس آ ہی نہیں سکتے, بچ ہی نہیں سکتے. تو دیکھیں کتنی اہم چیز ہے اللہ کا ذکر, آپ سوچیں سر, آ رہی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی دوست, یہ میں تھوڑی سی بات جو عرض کی ہے کوئی تغیر نہیں کی, آج ہی پڑھ رہا تھا میں, آیا تو ایک ذہن میں آیا, میں کہ یار یہ تو بہت عمدہ چیز ہے, الحمد للہ سورہ اللہ آیا, آج میں پڑھ رہا تھا میں ذہن میں یہ آیت آ گئی الحمد للہ, میں اپنے ساتھیوں سے بیٹھ کے بات کریں گے, بھائی تو ذکر دیں کتنی اہم چیز ہے. بعض چیزیں انسان کو مل جاتی ہیں, وہ کرنے بھی لگتا ہے, اس کی اہمیت کو اس کو پتا نہیں ہوتا, سبحان اللہ, ये भी समझे ना, इसके लिए अहमियत बतानी पड़ती है आदमी को, ये बहुत अहम चीज है, इसको थोड़ी बातें छोड़ मत देना, बल्कि इस गनीमत समझना, इसको बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला ने हमें इस जमाने के अंदर, इस दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ा इनाम दे दिया है। सुबह शाम का जो जिक्र मिल जाना, सुबह अपने हजरत की बात खत में लिखा उन्होंने कि ये, और ये भी कहा कि ये खत साथियों को पढ़ा देना, हजरत ही कहा था उस खत में, उसके खत एंड में हजरत ये फरमाया था कि दोस्त बताना, उसमें लिखा है कि सुनो गौर से कि ये अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी नेमत है। ये लफ्ज अल्लाह के सुन लो, ये अल्लाह का जिक्र, आरिफ बिल्लाह कह रहा है, पूरी दुनिया खिताब कर रहे हैं, कहना ये सबको बता देना तुम पढ़ के कि अल्लाह का जिक्र जो है ये बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया संवर जाती है, आखिरत संवर जाती है, अल्लाह अल्लाह का रसूल राजी हो जाएगा और दिल तुम्हारा नूरानी हो जाएगा। ये पैगाम है एक बहुत बड़े आरिफ बिल्ला का, इस पूरी दुनिया को, वेस्टर्न दुनिया को, जो मेरे जरिए उन्होंने दी है, कोई और मतलब नहीं अल्लाह का जिक्र। अब याद पढ़ ले कुरान की, ये सारा कुरान है ना, जो हजरत ने फरमाया नहीं फरमाया है? ये तो कोई बात नहीं कि हम भाई दिल कर रहे आजकल करें ना करें, ये कोई इससे ताल्लुक नहीं है। ये तो एक ऐसा प्रोटेक्शन है हमारे लिए कि जो हमें जहन्नुम से, कब्र के अजाब से, हर चीज से बचाने वाली चीज है। अब हम उसका असर देख रहे हैं या नहीं देख, हम इससे कोई काम नहीं है। हमें डॉक्टर ने कहा है कि ये आप गोलियां आपने खानी है, बस हम दवा खाए जा रहे है, ये नहीं ऐसा। अल्लाह ने हमें की इलाज बताया और इतनी वाजह तौर पर ये देखें पूरी आयत अल्लाह ने बताई है, समझाया सारी बात कि जिक्र ना करने से ये है, जिक्र करने के ना करने से ये नुकसान होता है, जिक्र छोड़ने से ये नुकसान होता है, और जिक्र जो इंसान करता है तो उसको ये फायदा होता है। और उस पर सब्त कर दिया अल्लाह वालों की, जो अल्लाह वाले उनकी बातों को उन्होंने ऐलान किया इस चीज पर, जो ये समझ के बात कि समझो इस बात को जो अल्लाह को तुम्हें कुरान बता रहा है, किसी हालत में भी तुम अल्लाह के जिक्र को कमतर ना समझना, इसको छोटा ना समझना। सवाब अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन हमें सवाब से गर्ज ना, हमें किसी और चीज से, हमें तो ये गर्ज है कि भाई हम इस दुनिया से कामयाब और शाद चले जाएं, नंबर एक। नंबर दो कि जो आमाल अल्लाह पाक हमसे करवा रहे हैं उसमें शैतान आता है, नमाज में हमारा शैतान आ जाता है, हमारे कुरान में शैतान आ जाता है, हमारे सदकात के अंदर शैतान आ जाता है, हज उमर में शैतान आ जाता है, कोई जगह नहीं जिसमें दाखिल नहीं हो जाता, यह कुरान बता रहा है। खींच लेता है इंसान, फीडबैक शामिल हो जाते हैं इंसान की हर चीज के अंदर, छोड़ता ही नहीं खालिस। वाहिद एक चीज अल्लाह ताला बताता है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि वाकई शैतान मुझे बर्बाद कर रहे हैं, मेरी नमाजों को, मेरी इबादत को, तो सब करो जिस वक्त तुम अल्लाह का जिक्र करो। दिमागी चीज तो नहीं है यार, बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह का, फजल है अल्लाह का, बड़ा करम है कि हमें इसकी इतनी अहमियत के पता ना होने के बावजूद हम लगे हुए अल्लाह की फजल से करे जा रहे। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसकी कदर करें, बहुत तेजी से वक्त गुजरता जाता है। देखें एक एक दिन में दो दो जनाजे जा रहे हैं, दो दो जनाजे जाते हैं, अपने भी जाते हैं, पराए भी जाते हैं, हम पता है कि बारिश इंसान की आज है। तो कम अज कम इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला हम तो कमजोर हैं, शैतान को तो बहुत ऊंचे नीचे वार हैं और जमाना भी आज ऐसा है, तो हम तो अब तेरे जिक्र की सहारा लेते हैं। जिस घर के अंदर, जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में अल्लाह का जिक्र पहुंच गया, सुभान अल्लाह, जिस घर में अल्लाह का जिक्र पहुंच गया, फरमाया वो नूर बन जाता है। हदीस है कि आसमान वालों को वो घर जहां अल्लाह का जिक्र होता हो, मुझे बताया, जहां अल्लाह का जिक्र होता है, आसमान वालों को ऊपर जो है फरिश्ते, उनको वो जगह, वो घर, जिससे हमें चांद नजर आता है, कितना खूबसूरत चौदहवीं का चांद आता है ना, रात हो, बादल गायब हो और पूरा चौदहवीं का चांद हो, तो कितना खूबसूरत लगता है जब हम नीचे देखते हैं आसमान की तरफ, कितना खूबसूरत तारे निकल रहे हैं, चांद निकल रहा है, देखते हैं ना। तो इसी तरह आसमान के ऊपर जो फरिश्ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी जमीन पर तारीकी होती है गुनाहों की, तो जिस घर के अंदर अल्लाह का जिक्र होता है तो उनको चांद की तरह नजर आता है, चमकता हुआ। और गुणों से बचता कैसे शैतान से, हदीस ने बताया। पहले अल्लाह ने मिसाल दी कुरान से, अल्लाह के हबीब ने मिसाल दी इसकी, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिए बातों को वही के जरिए, अल्लाह के नबी ने फिर अपनी जबान और अक्स से उसको तशरीफ फरमा दी, इसको हदीस कहते हैं, तशरीफ फरमा दी कि दुश्मन तेरे पीछे लगा हो मारने के लिए और तू भाग रहा हो, तेरा थोड़ा बहुत फासला हो गया और तुझे पकड़ने वाला हो दुश्मन, क्या हालत है इंसान को मैं बताए, वो लिए बंदूक और जनाब चीजें आपके पीछे मारने के लिए भाग रहा है, भाग रहे हैं आप वही भाग रहे हैं, कब तक भागेंगे, अगर पकड़ जाएंगे वो तो मार देगा आपको, भागते उसने क्या किया कि एकदम उसको किला नजर आया, ऐसी जगह नजर आई जहां छुप जाए, वो किले के अंदर चला गया तो उस दुश्मन बाहर खड़ा होकर अंदर जा ही नहीं सकता। फरमाया ये किला जो है अल्लाह का जिक्र है कि जब इंसान चारों तरफ से गुनाह में गिर जाता है ना, यार बच नहीं जा रहा, किस तरह बचे समझ नहीं आ रहा, यार है ही गुनाह, फलां इमाम साहब बता रहे थे, मौलाना साहब बता रहे थे, यार ये चीज करना गुनाह है, या फलां ये पिक्चरें देखना है, सब गाने बजाने सब ये गुनाह है, मानता भी आदमी मुझसे गुनाह हो रहा है, यार नमाज छोड़ना है सब कुछ गुनाह है, ये फाशी बातें ये गलत चीजें सारी जितनी सब गुनाह हो रहा है, घर के अंदर बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, बाप भी कर रहे हैं, शोहर भी कर रहे हैं, माँ भी कर रही है, सब कर रहे हैं, गुनाह चल रहा है मामला। अब वो मनहूस घर बन जाते हैं, मनहूस जगहें बन जाती हैं जहां पे गुनाह होते हैं, वहां पे लानतें आती है अल्लाह ताला की, आप ये तो सोचें, जहां देख रहे सब कुछ लेकर भाई ये नहीं करो भाई फला करो, कुछ असर नहीं पड़ता, अल्लाह ताला बता दिया सुम वाला तक सुन, ये निकल नहीं सकते सुम वाला एक सुन, ये नहीं निकलेंगे, बास आ ही नहीं सकते, क्योंकि बास आने की एक ही चीज है कि तू खुद भी जिक्र करो और घर में जिक्र जारी करो। कुरान बता रहा हूं, आज अगर हम बचना चाहते हैं, अपने बच्चों को सही करना चाहते हैं, अपनी औलादों को बचाना चाहते हैं, खुद हम अपने आप को बचना चाहते हैं, किस चीज से, अल्लाह के अजाबों से, अल्लाह के गजब से, अल्लाह की नाराजगी से, बेबरकती से, सब उस वक्त होता है। बचने का सवाही तरीका कुरान जो बताते हैं वो क्या चीज है, मुझे बोलो, कुछ ना है वो जिक्र जारी करें अपने घर में इंशाल्लाह, जैसे अभी हम जिक्र करते हैं ना तो अपने घर वालों जला दिया करें इसको, सबसे पहले तो शैतान तबाह होंगे, क्योंकि जितने भी जिन्नात और शैतानों को भाग जाएंगे अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की वजह से। और इसके देख जितना सख्त अंदर शैतान होता है इंसान, उतनी मुश्किल उसको अल्लाह की तरफ जिक्र की तरफ लाना होता है, ये सोच रहे हैं आप, हर बात मान जाएंगे, जब जिक्र की बात करेंगे ना तो उसको कंठ लगेगी एकदम, क्योंकि अंदर शैतान है ना। और जिस वक्त अल्लाह ताला कहता है उसकी आंख खोल देता हूं, तज़क्कुर फ़िज़ाम युब्सिरून, कि जिस वक्त उसकी आंख खुल जाती है, कहता ला ला ये मैं करता था ये गुनाह, मैं इस जगह पे फिरता था, जब वो जगहों से घूमते हैं उस जगह पे, तो अंदर उसकी अल्लाह कलाम है ना, उसकी आंख कैसे खुलती है कि उसकी झुरझुरी आती है, उस जगह से जान छोड़ देते हैं, उन रास्तों में जान छोड़ देते हैं, यार मैं फुल्ला यहां मैं ही काम करता था, मैं इन लड़कियों के साथ यहां फिरता था, तो वो लड़की की बदमाशी कर रही है, अल्लाह उसकी जवाब खोल देता है, ओ कहते इतने लोगों के साथ में फिरती थी, मुसलमान होकर मैं ये काम करती थी। आम होते हैं ना आजकल यूनिवर्सिटी के अंदर, पांच पांच छह छह चार चार बॉयज फ्रेंड रखे होते हैं, सब चलता है ना काम, तो और जब आंख खुलती है तो वो काम जाती है फिर, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितनी बड़ी प्यारी बात है, आज हम किसी पे देखते हैं कोई गुनाह में गर्क है, कोई लड़की है, कोई आदमी है, कोई मर्द है, कोई लड़का है, चार चार बॉयफ्रेंड है, तीन तीन बॉयफ्रेंड है, लड़की के लड़के के घूम रहे हैं, तो एक चीज निगाह में जरूर रखना, बात एक बात जरूर सोच के रखना कि ये ना करो, जो अल्लाह जो है वो बड़ा क्रम करने वाला है दोस्तों, उससे नफरत ना करो, उससे नफरत ना करो, हो सकता है कि उसके पास अभी भी एक बहुत बड़ा वार मौजूद है कि किसी अल्लाह वाले की नजर पड़े और वो तोबा कर जाए तो वो एकदम पाक हो जाएगा। गया, और हो सकता है कि कल हमें अपने ईमान की पता ना हो, वो जन्नत में जा रहा हो, हम किसी और तरफ जा रहे हैं, उसकी तो भाई वो तो कोई जजमेंट नहीं ना अल्लाह ताला की, तो ऊंचा है। तो ये तो एक गुनाह को कर रहा है, कोई दस दस फ्रेंड रखे हैं, पंद्रह पंद्रह फ्रेंड रखे हैं, जाहिर एक बुरी चीज है, जाहिर बहुत बुरी चीज है, लेकिन ये फिर भी नाउमीद आदमी नहीं हो सकता, भाई
کسی نہ کسی طرح اس کو اللہ کا ذکر اللہ نصیب ہو جائے یا اس نے توبہ طائب ہو گیا کچھ ہو گیا. میں بتاتا ہوں آج کے زمانے میں تو کوئی شخص ولی اللہ ایسا ہو گئے جو یہ کام کر کے نہ آیا ہو. سبحان اللہ. دیکھیں بڑے بڑے ولیوں کی ہی داستان ملتی ہے کہ اللہ ان کو انہیں گناہوں سے نکال کے اپنا غوث بنا دیتا ہے اور قطب بنا دیتا ہے. بس یہ ہے ایک چیز کہ جب اس کو چیز نصیب ہو جائے الحمدللہ. ڈوب رہا ہے انسان سمندر کے اندر لیکن ایک دم کشتی نصیب ہوگی تو ایک دم کشتی میں بیٹھ کے نکلا ہے باہر. سبحان اللہ. بس یہی ہے کشتی مل گئی جسے انسان کو تو نکل آتا ہے. پھر کیا جتنے زنا کیے ہوں جتنے فرینڈ ہوں کچھ بھی ہوں سب غائب ہو جاتے ہیں فنش. کیونکہ اللہ نے کہا تم نے توبہ کر لی سب ختم. سبحان اللہ. سب ختم. بھول جا وہ جگاؤں کو بھول جا. ہاں نفرت برقرار رہے گی اس کو ظاہر ہے اس نے جب کام وہ کیے ہوں گے تو اس پہ تعجب تو کرے گا. یعنی جس میں اس کو لذت ہوتی تھی مزہ آتا تھا جب اس کو کہا تھا چھوڑ یہ کام تو اس پہ لڑتا تھا کہ مجھے کیوں کہتے ہیں یہ کام چھوڑ دماغ خراب ہے ان لوگوں کا. ہنستا تھا ان کو مجھے منع کر رہے ہیں لیکن آج ان سے کہے وہ کام کر تو ہم لوگ کہے گا خدا کے واسطے کیا بکواس کرتے یہ کام نہ کرو. آج یہی کام کرتے لوگ اس کو برا لگتے ہیں کہ یار کیا کر رہے ہیں یہ کام کو عقل کیوں نہیں ہے. کیوں تذکر اللہ کا وعدہ ہے سبحان اللہ کہ اللہ کا ذکر تو کر سینہ میں تیرا کھولتا ہوں. یہ اللہ کا ذکر دوستو. تو یہ فکر پیدا کرو نا بھائی. اب آپ خود بھی ذکر کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو بتاؤ بھی ذکر کر رہے ہیں اللہ کا ہے مفتی ایک ماشاء اللہ سمندر چل رہا ہے اللہ کا نور کا دریا بہ رہا ہے گھسیٹ گھسیٹ کے لائیں تبلیغ نہیں تو اور کیا ہے. یہ آدمی کو بچا نہیں تو اب کیا ہے. کل اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ اس مسجد میں اللہ فلاح کے اندر یہاں پر ذکر ہو رہا تھا آپ نے کتنے لوگوں کو دعوت دی. جی تیرا کام حضرت ابراہیم کو کیا کہا تھا کہ تو کیا فکر کرتا ہے جنگل میں کھڑا ہے کوئی بھی نہیں ہے ندا کرنا تیرا کام ہے آدمی بھیجا میرا کام ہوگا. آج اس خانہ کعبہ میں جگہ ہی نہیں ملتی سجدہ بھی کر سکے آدمی اتنے کروڑ انسان ہوتے ہیں. تو ہمارا کام تو بھائی دعوت دینا ہے لوگوں کو. ہم ان کے گناہ نہیں دیکھ رہے گندی سے گندی جگہ کوئی کھڑا ہے یا کوئی لڑکی کھڑی ہے ہمیں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کو کہنا ہو نا آپ ذکر تو کریں نا ذکر میں تو بیٹھے نا ہمارے اس کی بات تو سنیں نا یہ تو کریں نا آپ آئیں تو سی نا. میں قسم کھا کرتا ہوں کہ اگر بدلنا جائیں تو کوئی دوسری بات کی. تو کل ہم سے پوچھا جائے گا یہ اچھی بات تو نہیں ہے حلوے کا پلیٹ آپ کے سامنے رکھیے بس ہاتھ ادھر کر کے اکیلے کھائے جا رہے ہیں کہ فائدہ کی. یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ حلوہ بڑا لذیذ ہے ماشاء اللہ اس میں بادام بھی ہیں اور پستے بھی ہیں اور گھی بھی خوب تیر رہے ہیں ماشاء اللہ لطف آپ کو آ رہا ہے کھانے میں تو لوگوں کو بھی دعوت نہیں آئے نا اس حلوے کو کھائیں بھائی آپ بھی آئے نا. اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی آدمی کو دعوت دے کر ذکر میں آپ لے آئے ہیں اور وہ آ گیا ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا انعام کتنا ہوگا آخرت میں تو آپ اس محنت کو بہت تھوڑی محنت سمجھیں گے. یاد رکھیں آپ نے ایک زندگی کو بچا لیا ہے ایک معاشرے پتہ نہیں اس سے آگے لوگ کتنے اللہ کے ذکر میں آئیں گے. اور یہ میں دیکھ رہا ہوں ایک صاحب آتے ہیں یہ ذکر سیکھنا چاہتے ہیں میرے پاس میں کہا ذکر کیا وہ جی وہ بالکل ڈبل آج وہ الحمدللہ اس کو دیکھو تو میں حیران ہوتا ہوں آدمی کو اس پہ دنیا رشک کر رہی ہے یہ آدمی یہی تھا کہتے دنیا مجھے رشک کرتی ہے آج مجھے خود کہ میں کہتے یار تم وہی آدمی ہو. اچھا یہ آپ کی جماعت کا آدمی ہے نام نہیں بتاؤں اس کو دیکھا کہتے مجھے دیکھ کے میرے گھر والے رشک کرتے ہیں کہ تم یہ تھے یار کمال ہو گیا لگتا ہے تم ماشاء اللہ یہ کام ہوتا تھا. تو اس کو پتہ نہیں وہ اس کو صحیح سمجھ آئے گا ماشاء اللہ آپ صحیح تھا وہ تو بےکار چیز تھے جو میں کرتا تھا وہ قرآن جی کہا فضام جب سرو آنکھیں کھول دیں گے اللہ بھائی ایک دم کھلتی نا آنکھیں نہیں کھلتی کھل جاتی ایک دم انسان پتہ لگ جاتا. تو بھائی اگر ہم اپنے معاشرے کو صحیح کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کو کریں معاشرہ کے جو اپنے گھر کو صحیح کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کو خود اس کی قدر محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے. چھوٹی چھوٹی معاونی ہوتی ذکر ہم قربانی کرتے چلو آج تسبیح نہیں کرتے چلو آج ذکر نہیں کرتے چلو آج ہم فلاں وہ تو خود اپنا نقصان ہے. تو جب سب سے پہلے تو خود اہمیت پیدا کریں کہ کتنی بڑا اللہ نے ہمیں انعام دے دیا ہے کہ پروٹیکشن دے دی ہے شیطان سے نہ جانے ہم ذکر نہ کرتے تو کتنی کتنی ہماری بربادی ہو جاتی ہیں. हम कहां पहुंचे होते, हम जिसको खुदा समझ होते वो बुद्ध थे, वो बुद्ध थे। जहां हम जाते थे कहते शाह जी दीन दीन वाले पीर साहब हैं, ये दीन वाले लोग हैं, यहाँ बड़ी अच्छी मजलिस होती है, या फला होता है, या खत्म शरीफ चलते हैं, वो फला चलता है, फला चलता है, ये बुद्ध थे जो हमें दुनिया से रोक रहे थे, ये बुद्ध थे जिन्हें पता ही नहीं था इश्क रसूल क्या है, सुन्नत का मोहब्बत क्या है, नबी पाक सल्लम की मोहब्बत क्या है। हम तो इनको खुदा समझते थे जो ये बातें बताते थे हमें, इनकी पर सब कुछ हम लुटा दिया करते थे, इन पर बस बड़ा हम दीनदार हैं, बड़े कुछ हैं, बस एक खास दिनों के अंदर जाके हम वो काम कर लेते थे, हमारा बड़ा समझते थे। लेकिन जिक्र जब आंख खोली तो पता चला अल्हम्दुलिल्लाह कि दीन तो वही है, असल तो ये है। तो हमने खुद भी इस जिक्र पर जाना, खुद क्या करना नहीं है लोगों को, ये दावत इसलिए समझ के कि ना आप मुझ पे एहसान करेंगे ना अल्लाह पे एहसान करेंगे, नहीं, बल्कि ये इतना बड़ा काम आपकी आखिरत के लिए होगा कि आप मर जाएंगे, वो जिक्र कर रहा होगा तो आपकी कब्र नूर से भर रही होगी। सुबह बेशक आपका बेटा हो, बेशक आपकी बेटी, ये नहीं कि हम बाहर की तबलीग ही तबलीग होती, नहीं, गर्स की तबलीग बड़े बुलंद होती है। हमने अपनी माँ को सही कर लिया, अपनी बहन को सही कर लिया, उस पर जोर लगाओ बहन पे, क्या ना अभी चलो ना तो जिक्र गाली खाते हो, बड़े तरीके से गिफ्ट दो, हदीये दो, एक टारगेट बना ले आदमी, ये तबलीग है, ये भी एक तबलीग का बहुत बड़ा अंदाज है। एक तो जनरल तबलीग होती है जैसे हमारे माशे जमातें आती हैं जाती हैं, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि जो इंडिविजुअल इंफरादी तौर पर तबलीग की जाए वो भी जरूरी है, वो भी इसका हिस्सा है। एक टारगेट बना ले आदमी, इस आदमी को सही करना है। अब मैंने एक टारगेट बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे इस पर 1.5 साल हो गया काम करते हुए मस्जिद में, पहले तो मुझे देखते गाली निकालता था 3, 4, 5, 6, बाद में समझा क्या कि इसको जिक्र की मोहब्बत मैंने पैदा करवा दी, क्योंकि जब जिक्र की मोहब्बत पैदा हो जाती है तो जिक्र करने वाले से मोहब्बत हो जाती है। ये मैं बता देता हूँ, ये कहते हैं अल्लाह वालों जूते उठा रहे हैं, फलां कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि इसलिए नहीं उठा रहे, आदमी पूछते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला उनके दिल के अंदर उस शख्स से इतनी मोहब्बत कर दी जाती है कि दिल करता है उसके बस बस पैठे चूमता रहा था, उसके कपड़े चूमो ले, उसकी चीज चूमो ले उसको। मैं अपने हजरत साहब माथ पर जाते थे सब, इधर दुआ में उनके जहां पर खड़े होते थे ना मुसल्ले पे, मैं उसको चूमता था, ये भी नहीं कोई देख रहा नहीं। अब देखें कि मोहब्बत कहां तक इंसान को ले जाती है, क्या मोहब्बत है अल्लाह ताला, ये फर्ज़ हम सुन के मैं जब आंख खोलता हूं तो उसको पता चल जाता है कि अल्लाह का जिक्र एक ऐसी चीज है कि जिक्र करने वालों से इतनी मोहब्बत होती है तो उससे इतनी मोहब्बत हो जाएगी जिसका जिक्र है। इतना बड़ा तबलीग का ये तो वेपन है, हथियार है, देख रहे हैं जिसको आप, ये अच्छा है, जितना सख्त दिलो उसको टारगेट बनाए, मजे लें आराम से, मोहब्बत से, दावत से, चाय से, प्यार से, गालियां खा के और उसकी खिदमत करके, करते करते मैं उस आदमी को काफी नजदीक ले आया हूं माशाल्लाह, अब मेरे इतने करीब आ गए कि अब मैं उसको दावत देने वाला हूं थोड़ी देर में, जो सख्तरीन खिलाफ था, मेरा टारगेट है सख्तरीन खिलाफ था इस चीज के, आते उसने सबसे पहले मुझे झाड़ा था, नहीं मैं भाई मेरा भाई है, इसको पता नहीं, इसकी आंख नहीं खुली अभी, तो कुरान तो ये बात कहता है मैं एकदम उसको जरूर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज दूंगा, जरूर सिखाऊंगा इसको, अल्लाह के फजल से अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ, आप भी दुआ फरमाएं इसके लिए, तो क्या मेरे आखिरत के लिए कितनी बड़ा सवाब हो जाएगी। अब देखें किसी को पता नहीं उस आदमी का टारगेट, दुनिया से क्या ताल्लुक उसका, किसी इंसान से क्या ताल्लुक, लेकिन मैं अपनी आखिरत बना रहा हूं, वो ग्रेट चीज दे रहा हूं कि जिसपे सारे आमाल का अनसार है अल्लाह के जिक्र पे, तमाम हमारी इबादत का अनसार किस पे है, डिपेंड किस पे करता है, अल्लाह के जिक्र पे करता है। जिक्र होगा तो इबादत कबूल होगी ना, जिक्र होगा तो उसमें इखलास आएगा ना, जिक्र होगा तो अल्लाह उसको पसंद करेगा, जिक्र होगा तो इबादत में शैतान नहीं होगा, तभी तो हजरत ने गारंटी दी थी बड़ी, दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाएंगे, दिन नूरानी हो जाएगी, कितनी गारंटी आ रही है मुझे बताया। तो किसी अल्लाह वाले से जिक्र सीखें, और सीखने के बाद जैसे बताया सुबह शाम आप ऐसे करें, उस पर खतर करें। देखें मैंने एक बहुत बड़ी आयत आपके सामने बताई है, मैं तो इस आयत के पढ़ने के बाद कुरान वहीं बंद कर लिया और सोचने लगा कि सुभान अल्लाह कि हमें तो भाई पता नहीं अभी क्या क्या इनामात होंगे जिक्र में, इतनी दुआएं दी हजरत साहब को मैंने, इतनी दुआएं दी कि जितनी मैं दे सकता था, रो रो के मैं साहब अल्लाह आपको बस अपने खास रहमतों के साथ नवाजे, आपको आपके खानदान को बच्चों को, कि कितनी बड़ा आपने करम फरमा दिया,
कितना बड़ा क्रम फरमा दिया कि ना कोई एहसान ना कुछ लेना ना वो, कि हमें आपने अल्लाह का जिक्र सिखा दिया और हम जिक्र करने वाले बन गए, और हम अपने अपने हम तो शैतान से हर वक्त लड़ सकते हैं। अब मैं दो तीन चीजें समझ लें इसमें कि जब भी तो चलेगा, जब भी गुनाहों का गलबा होने लगे या मोटिवेट करना शुरू कर दे तो वो कौन है समझ जाए, क्या चीज है वो, शैतान काम कर रहा है, फौरन समझ जाए कि वो लड़की नहीं है जो आपको बुला रही है, वो गुनाह नहीं है जो आपको बुला रहा है, ये गाने बजाने नहीं है जो आपको बुला रहे हैं, ये रातों में जो बदमाशी हो रही है ये वो नहीं है, ये क्या चीज है। और जिस तरह आप उसको काबू पिया खुद बखुद उससे नफरत हो जाएगी, आप बेकार नजर आएगी चीज। अब तो उस वक्त फिर हमने क्या करना है, अल्लाह से पनाह मांगनी है। पनाह फिर किस तरह मांगनी है, सब कुरान बताऊ किस तरह मांगनी है मुझे बोले, अल्लाह का जिक्र से तज़क्करु फ़ज़ाहुम अब्सरुम, जैसे अल्लाह का जिक्र करते हैं समझदार लोग तकवे वाले बनाए, शायद इनमें अकल है, जिनमें अकल आ गई है तो फौरन तस्वीर उठाते हैं, कुछ नहीं करते, अल्लाह 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 अल्लाह, आधा घंटा तस्वीर चलाएंगे सब गायब, शैतान भी गया, चीजें भी गायब, डिप्रेशन भी गायब, तो फला भी गायब, तो फला भी गायब। तो तीन चीजें हैं आज करने की अल्हम्दुलिल्लाह, जो बातें इलाज है। उसके बाद अगली चीज ये कि हर एक को हमने दावत देनी है, सबसे पहले बदमाश से बदमाश भी हो, शरारती भी शरारती हो, दस दस बॉयफ्रेंड दस गर्लफ्रेंड भी हो जिसके पास, मोहब्बत से जा कहेंगे जिक्र में तो आओ, जिक्र की दावत दे रहा हूँ, किसी काम से तो नहीं तो करो, जिक्र तो कर लो बस, चलो किस्सा खत्म, फिर देखिए अल्लाह का रंग कैसे चढ़ता है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब फरमाए।